रूट वर्ड और मुश्किल अल्फाज की वजाहत। आप देखिए कि लफ्ज है तंजील। तंजील जो है ये, इसका रूट क्या है तंजील का, आप पढ़ चुकी हैं। इसका रूट भी नून जा लाम है, नजाला से, है ना। तो नजाला जो है इसके माने क्या होते हैं, हाँ, यानी उतरना, और अनजला उतारना, और जो तंजील होती है ना उसका मतलब होता है एहतमाम और तरतीब के साथ थोड़ा थोड़ा करके उतारना, बतदरीज, यानी एहतमाम के साथ और तरतीब के साथ उतरना तो सही, लेकिन क्या है कि जो चीज उतारी जा रही है वो थोड़ी थोड़ी करके और एहतमाम के साथ जो है वो उतारी जाती है। मसलन जो है वो उतारने के लिए, जैसे नजला उतरना, ऊपर आप देखें ना आगे ही नजला भी है, तो नजला क्या है, उतरना, बुलंदी से किसी चीज का नीचे आना, ये आम इस्तेमाल है, ये आम तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे नजूल क्या होता है, उतरना, और सऊद क्या होता है, चढ़ना, तो नजूल की जिद है सऊद और उरूज। हाँ अच्छा, अब जो है जो बात समझने वाली है कि तंजील यानी अनजला में या नजला में फर्क क्या है, तो इसके बारे में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि तंजील जो है ना इसके मानी क्या है कि एहतमाम के साथ तरतीब के साथ चीज को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उतारना। और आपको पता ही है कि कुरान मजीद एकदम तो नाजिल नहीं हुआ था, लैलतुल कदर की जो रात है इसमें दुनिया के आसमान पर तो इकट्ठा आ गया, यकबारगी आ गया, लेकिन बाद में हसबे जरूरत हसबे मौका वही के जरिए थोड़ा थोड़ा करके जो है वो नाजिल किया जाता रहा। ये है इसके माने। और जबकि जो नजला है उसके मानी क्या है कि यक बारगी एक चीज को जो है वो उतार देना। ठीक है, ये है फर्क कि तंजील में तदरीज भी होती है और थोड़ा थोड़ा करके भी होता है, और नजला जो है या इंजाल इसमें क्या है कि यक बारगी उतारना। बहरहाल तो ये एक लफ्ज है। फिर इसके बाद है जुबुर। जुबुर आप पहले पढ़ चुकी हैं। शाबाश, आप पहले ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं, जाबारा। और इसके माने क्या होते हैं जाबारा के? हाँ शाबाश, ये लफ्ज जो है ये टुकड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ना टुकड़े हैं, और इसी तरह किताब के लिए भी आता है, जबर को भी कहते हैं, है ना, बहुत से जो टुकड़े हैं उनको मिलाकर जो है वो किताब बन जाती है। तो जबूर की जमा है जुबुर, सहीफे किताबें उनको कहा जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए तो उलमा, इसकी जो है ये इसका वाहिद क्या है, आलिम, और रूट क्या है, आयन लामीम। शाबाश। फिर इसके बाद अहम लफ्ज है आजमीन। हाँ, आयन जी मीम इसका रूट है अजम से, और ये लफ्ज जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गैर अरबी होते हैं, जो गैर अरबी होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहते हैं कि जो गैर फसी होते हैं यानी जिनको गैर फसी अरबी आती है, खा वो अरबी हो या गैर अजमी हो, उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अरबों के यहां भी अगर किसी को अच्छी अरबी जबान नहीं आती, जो फसीहो बलीग जबान है, तो वो उसको भी कहते हैं कि ये अजमी है, यानी गैर फसी अरब हो या गैर अरब उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद जो है आप देखें कि ये आजम, आजम की जमा है। और आइन जी मीम जो है ये गुंगे के लिए भी आता है ना। आइन जी मीम का लफ्ज जो है ये गुंगे के लिए भी आता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर कोई शख्स जो है जिसको अच्छा बोलना नहीं आता तो उसको भी कहते हैं अजमी, और जिसको बिल्कुल बोलना नहीं आता ये लोग उसको भी कहते हैं कि जो है वो अजमी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आजमीन, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लफ्ज जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जैसे कि किसी अजमी पर जिसको जो है वो अरबी बोलनी नहीं आती, सही जबान उसको जो है उससे वो शख्स जो है वो महरूम है। तो वैसे अगर आप देखें तो बोलना, बोलने के लिए लफ्ज भी है। लफ्ज के मानी होते हैं फेंकना, लफजा, लफजा कहते हैं वो बड़ी लफाजी करती है, वो बहुत बोलती है। तो मुंह से फेंकी हुई चीज या दस्तरखान से झाड़ी हुई चीज को भी लफ्ज कहते हैं। जैसे दस्तरखान को आप झाड़ते हैं तो जो चीज गिर जाती है वो भी लफ्ज लफ्ज है, और लफाजा भी उसको कहते हैं। इसी तरह लाफिज चक्की को कहते हैं कि वो आटा बाहर फेंकती जाती है। तो लफ्ज क्या होते हैं? किसी बात का जबान से अदा होना, खा आधा लफ्ज ही क्यों ना हो। फिर दूसरा है नतक, ऐसी बात जिसके मानी समझ में आए। फिर है फसाहा, दूध के ऊपर से झाग उतार कर दूध को साफ कर लेना, किसी चीज को अमेजिश से पाक साफ कर लेना। जब दूध से झाग उतारते हैं तो पता चलता है सही दूध कितना है, अगर झाग हो तो लगता है दूध काफी ज्यादा है ना। तो इसी तरह ये लफ्ज जो है फसाहुर रजुल, यानी उधार के मानी लेकर किसी शख्स का खुश गुफ्तार होना के लिए भी बोला जाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वाकी हारून हुआ अफसहु मिन्नी। तो फासवात हा के मानी क्या है? दूध के ऊपर से झाग उतार कर दूध को साफ करना या किसी चीज से अमेजिश जो है हटा देना। इसी तरह जो है अल एराब, ये जो एराब अल्फाज पर जब लग जाते हैं तो चीज वाजे हो जाती है ना। तो एराब का मानी होता है किसी बात को वाजे करना, बात को वजाहत से बयान कर देना, एराब। और अरबी वजाहत से बयान करने वाला है ना। इसी तरह फसी कलाम को भी जो है वो अरबी कहा जाता है, इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिया। तो ये जो आजम है ना, कहते हैं कि आजम उस शख्स को कहते हैं जिसकी जबान फसी ना हो, खा वो जबान अरबी ही क्यों ना हो, यानी अरबों में से हो या गैर अरबों में से। तो अरब लोग जो हैं जिसको गैर फसी समझते थे ना उसको आजम कहते थे, अजमी। जैसे जो जानवर होते हैं ना चौपाए, उनको भी अजमा कहा जाता है, अजमा। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जो बात है ना उसको ठीक तरह बयान नहीं कर सकते। वो आवाजें तो निकालते हैं भूख में, प्यास में, दुख में, तकलीफ में, लेकिन पता नहीं चलता। तो आजम के मानी क्या है? गैर फसी और मुबहम बात करना, गुंगे को कहते हैं, जानवर को भी कहते हैं। खैर तकल्लुम, तकल्लुम क्या होता है? बोलना, बात को मुंह में लाना, कलाम करना। लहन, लहन भी लफ्ज बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। लहन के मानी क्या होते हैं? लहन दाऊदी शाबाश, इसका मतलब होता है कि मुरविजा तर्ज बयान या अंदाजे गुफ्तगू से हटकर कोई तरीका इख्तियार करना। लहन जो आम तरीका है ना उससे फेर देने को भी कहते हैं। जैसे अल्लाह नु फसी कलाम को कहते हैं लहन, सुरीली आवाज से पढ़ना, और लहन दाऊदी मशहूर है। तो असल में लहन के असल मानी क्या हुए? लहजे की तब्दीली, लहजे की तब्दीली। तो बहरहाल बोलने के लिए कुरान में कितने लफ्ज आपने समझे? सात लफ्ज आप पढ़ चुकी हैं, नुतक पढ़ चुकी हैं, फसाहत फसुहा पढ़ चुकी हैं, इसी तरह आरब भी पढ़ चुकी हैं, और तकल्लुम भी पढ़ चुकी हैं, और लहन भी पढ़ चुकी हैं, और आजम ये भी जो है वो आपके सामने आया। तो ये है कि बादिल आजमीन, तो यहां पर ये लफ्ज जो है ये अजमी के मानी में आया है जो गैर फसी है। फिर इसके बाद है सलाका, सलक ना हो। आयत 200 में सीन लाम काफ, जिसके मानी है दाखिल कर देना, प्रो देना, घुसा देना और चलाना किसी को, सालिक चलने वाला, सालिक, सालिका लोग नाम भी रखते हैं, मसलक जिस पर लोग चलते हैं। फिर इसके बाद जो है लफ्ज है बख्तातन, आए 202 में बख्तातन, बख्तातन लफ्ज है और ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज आप पहले पढ़ चुकी हैं और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अचानक के मानी में, बिल्कुल कोई अचानक काम किया जाता है ना उसके लिए आता है। इसका रूट है बागैनता, बागैनता, और अचानक के ये मानी देता है। वैसे तो आप देखें तो अचानक के लिए इज भी आता है, इजा भी आता है ना, तो इज अमूमन माजी के लिए आता है और इजा मजारे के लिए, और ये दोनों हरूफ कभी कभी अचानक के लिए भी आ जाते हैं, इज और अजा। जैसे अचानक कोई खबर बताई जा रही है जिसका पहले से भी ताल्लुक है तो उसके लिए भी आता है। फालका साहू फाइजा है या सुबान मुबीन, अब डाली तो लाठी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर हुआ क्या, अचानक वो वाज़े साम था, अजलहा था। तो बख्तातन का मतलब क्या होता है कि अचानक किसी चीज का यूं जाहिर होना कि उसके जहूर का गुमान भी ना हो। अच्छा, अब फिर इसमें मतलब अब इज और अजा भी अचानक के लिए, बख्तातन भी अचानक के लिए, इनमें फर्क क्या है? कहते हैं जो इज और अजा है इसमें फर्क ये होता है कि इजा में बाद के वाक्य की पहले वाक्य से कुछ ताल्लुक होता है, कुछ निस्बत होती है इजा। अब आप देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ये वाक्या कि फालका साहू, तो पहला ताल्लुक क्या है कि लाठी, बाद का ताल्लुक क्या है हिया सोबानु मुबीन, है ना। तो इजा में बाद के वाक्य की पहले के वाक्य से कुछ ताल्लुक या निस्बत होती है, जबकि जो बख्तातन है ना ये इसमें जो बात होती है नागहानी वाक्य का जिक्र होता है, पहले कोई वाक्य नहीं होता जिससे उसकी कोई निस्बत हो। जैसे कयामत का जब जिक्र आता है तो बख्तातन, हत्ता इजा जा अत हुम मुस्सातु बख्तातन कालू या हसरतना अलामा फरतना फीहा, तो ये है इसके मानी बख्तातन, अचानक। फिर है इसके बाद लफ्ज क्या है, माजूलून, क्या रूट है इसका, ऐन ज़ा लाम, और आपको मैंने बताया था अजल के मानी अलग करना है ना, ऐन उस वक्त जब मर्द अपने आप को अलग कर लेता है उसको भी अजल कहते हैं ना। साहबा ने पूछा था हम जो अजल करते हैं तो इसका क्या हुक्म है, वो हदीस आपको सुनाई थी, खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है। लमाजूलून, अलग करके रखे गए हैं, दूर रखे गए हैं। फिर इसके बाद है लफ्ज है और अब आ जाइए आयत नंबर 225 में, यही मून, हा या मीम, यही मून, यही मून जो है हैमुन मस्दर है इसका, और इसके अंदर ना दो मानी पाए जाते हैं। एक होता है आशिकाना कैफियत से आवारा फिरना, यानी इंसान के अंदर आशिकाना या मजनूनाना कैफियत हो और उससे वो आवारा हो जाए। जो आशिक होते हैं उनकी आवारगी बड़ी मशहूर है ना, तो आशिकाना कैफियत में आवारा फिरना। दूसरी कैफियत क्या है, सख्त प्यासे होना। तो जो आशिक होता है उसको भूख प्यास कभी पता नहीं चलता ना, और आप हैं कुरान के आशिक माशाल्लाह, है ना। तो इश्के हकीकी जिनको लग जाता है फिर वो भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं ना। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आ रहा है ना कि किसी मसले को तलाश कर रहे थे और कोई हदीस या कोई मसला ढूंढ रहे थे, पास ही उनके पास खजूरों का टोकरा पड़ा हुआ था, कुछ खाने की ऐसी चीज थी, खाते जा रहे थे और ढूंढते वो चीज ढूंढते जा रहे थे, ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने टोकरा खत्म कर दिया या इतनी खा ली है कि वो सारी, और नतीजा क्या निकला, कहते हैं कि उसी से फिर उनकी डेथ हो गई। यानी इतनी खा ली एहसास ही नहीं होता। बाज़ औक़ात आप किसी चीज में इतने ज्यादा मुस्तगरक होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं किसी काम में, किसी चीज में, भूख प्यास का, नींद का, किसी दूसरी चीज का एहसास नहीं होता। तो याद रखें, हा या मीम के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, आशिकाना कैफियत की वजह से अवारगी, और दूसरी चीज सख्त प्यास होना। और इस तरह ऊंट को भी कहते हैं, यानी ऊंट जो है ऐसा ऊंट जो सख्त प्यासा हो, उसके लिए भी हीम आता है। इसी तरह हयाम ऊंटों की एक बीमारी है जिसमें उन्हें इतनी प्यास लगती है कि पानी पीते जाते हैं और वो प्यास बुझती नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जब जहन्नमियों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, वो पानी पिएंगे और वो ऐसे पिएंगे, फशारिबून शुरबल हीम, वो ऐसे पिएंगे जैसे कि प्यासे ऊंट पीते हैं, प्यास बुझती नहीं। पिएंगे प्यास बुझाने के लिए जहन्नमी, लेकिन उनकी प्यास बुझेगी नहीं। खैर, यहाँ पे टॉपिक क्या है? यही मून, हा या मीम, भटकना, अवारगी, सरगर्दा होना। और आखिरी लफ्ज है यनकलिबून, काफ लाम बा, कल्ब से बदलना या पलट कर जाना,